भागवत सार की श्रृंखला में 11वें स्कंद के 5वें अध्याय पर चर्चा करेंगे और इसके पहले श्लोक को पढ़ेंगे और फिर आगे अध्याय पर चर्चा होगी। कृपया श्लोक दोहराइए। श्री राजोवाच भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवेत्तमाः तेषां शान्तकामानाम् कनिष्ठा विजितात्मना। श्रीराजोवाच भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवेत्तमाः तेषां शान्तकामानाम् कनिष्ठा विजितात्मना। श्रीराजोवाच भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवेत्तमा तेषां शान्तकामानाम् कनिष्ठा विजितात्मना।
श्रीराजोवाच भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमान्
तेषां शान्तकामानाम्
कनिष्ठा
विजितात्मना।
श्रीराजोवाच
भगवन्तं हरिं प्रायो
न भजन्त्यात्मवित्तमान्
तेषां शान्तकामानाम्
कनिष्ठा विजितात्मना।
श्रीराजोवाच राजा निमि ने पूछा भगवन्तं भगवान हरिं श्री हरि को प्रायः अधिकांशतया न नहीं भजन्ति पूजते हैं आत्मवित्तमाः आत्मा के विज्ञान के विषय में पूर्ण आप सभी तेषां उनके अशांत अतृप्त कामाना भौतिक इच्छाओं के का क्या निष्ठा गंतव्य अविजीत वश में न कर सकने वाले आत्मनाम अपनी। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, राजा निमि ने पूछा हे योगेंद्र आप सभी लोग आत्मविज्ञान में सर्वाधिक दक्ष हैं, अतः मुझे उन लोगों का गंतव्य बतलाइए जो प्रायः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की पूजा नहीं करते, जो अपनी भौतिक इच्छाओं की प्यास नहीं बुझा पाते तथा जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదా సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాశ్చ హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి గోపేశ గోపికాకాంత రాధాకాంత నమస్తుతే తప్త కాంచన గౌరాంగే రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియ వాచాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నమాఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీనితి నామినే నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతం కి 11వ స్కంద పర్ చర్చా కర్ రహే హై. ఆజ్ ఇస్కే 5వే అధ్యాయ కే సార్ కో కహెంగే. సో ఇస్ పర్ చర్చా కర్నే సే పహలే సనాతన్ గోస్వామి కి ప్రార్థనాఓ కో దోహరాయేంగే. యే ప్రార్థనాయే బడీ మహత్వపూర్ణ హై శ్రీమద్ భాగవత్ సమజ్నే కే లియే. సహీ భావ క్యా హై ये इन प्रार्थनाओं में सनातन गोस्वामी ने दिया है, तो आइए इनको दोहराए.
सर्वशास्त्राब्धि पीयूषः सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धान्त रत्नाढ्या सर्वलोकैक दृक्प्रदा సర్వభాగవతః ప్రాణ శ్రీమద్భాగవతః ప్రభో కలిద్వాంతో దిదాదిత్యా శ్రీకృష్ణ పరివర్తితా పరమానంద పాఠాయ ప్రేమవర్షక్షరాయ తే సర్వదా సర్వసేవ్యాయ శ్రీకృష్ణాయ నమోస్తుతే. మదేక బంధో మత్సంగే మద్గురో మన్మహాధన మన్నిస్తారక మద్భాగ్య మదానంద నమోస్తుతే. అసాధు సాధు తదాయి అతినీచోచతః కర హానముంచ కదాచిన్మా ప్రేణారత్కంఠయో స్ఫుర.
తో యే ఆఖరి అధ్యాయ హై జిస్మే నిమి మహారాజ్ కే ఆఖరి దో ప్రశ్న, 9 ప్రశ్న ఉన్నోనే కియే థే, తో ఆఖరి దో ప్రశ్నో కా ఉత్తర श्री चमस ऋषि और श्री करभाजन ऋषि देंगे. सो पहले प्रारंभ करते हैं प्रश्न से. जैसे हमने अभी अभी प्रश्न पढ़ा, तो पहले 18 श्लोकों में श्री चमस ऋषि ये बतला रहे हैं कि ऐसे लोग जो पापी हैं, अधर्मी हैं, जैसे प्रश्न किया भगवान की पूजा नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों की गति क्या. फिर 19वें श्लोक से लेकर 42 श्लोक तक वर्णन करेंगे श्री करभाजन ऋषि युग अवतारों का. अलग अलग युग में कौन से अवतार आए, युग अवतार कौन होते हैं, सतयुग के युग अवतार, त्रेता के युग अवतार, और फिर जब कलयुग पर आते हैं तो संकीर्तन यज्ञ का गुणगान करते हैं, भक्ति का गुणगान करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, कई सुंदर श्लोक हैं इसमें, विशेष करके कलयुग के लिए। कृष्ण वर्णन तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, तो ऐसे बहुत सुंदर ये अध्याय है। तो अब प्रश्न किया निमी महाराज ने कि ऐसे लोगों की क्या गति है, भगवान के विरुद्ध है, भगवान की भक्ति नहीं करते, क्या कारण है? निमी महाराज को क्यों पूछना चाहिए? आप अपने बारे में पूछो, उनको पूछना चाहिए कि मैं कहां जाऊंगा, मैं कैसे करूं, क्या करूं। दूसरों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि वो तो पापी नहीं है, वो तो अधर्मी नहीं है, तो ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जो भक्त होते हैं, निमी महाराज भगवान के भक्त हैं, वो अपनी चिंता नहीं करते कि मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा। प्रहलाद महाराज जी का, मुझे मेरी चिंता ही नहीं है, मुझे पता है मैं आपके धाम आ रहा हूं, मुझे मेरी चिंता नहीं है, मुझे ये मूर्खों की चिंता है जो यहाँ पड़े हुए हैं, जो यहाँ ये भोगों में पड़े हैं। अदांत गोभीर विशदम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना, मुझे इनकी चिंता। तो इसी तरह निमी महाराज ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि उनको आने वाले समय में या अपने भी राज्य में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो उसकी चिंता है, या जो आने वाले समय में संवाद को सुनेंगे उनकी चिंता, या हो सकता है जो इस संवाद को सुनेंगे ही नहीं उनकी भी चिंता। कई लोग हैं जो भागवत जानते नहीं है, भारत में लोग श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता के भेद को भी नहीं समझते हैं। कुछ लोगों ने तो नाम नहीं सुना है, जिन्होंने नाम सुना है वो जानते नहीं कि भगवद गीता क्या है और भागवत क्या है। क्योंकि ऐसा होता है कि वो कहते हैं भगवद गीता हाँ, भागवत हाँ, हमारे घर में है। एक बार हम किसी से पूछे आप भागवतम पता, बोले हमारे घर में है। वो आश्चर्य, उनको भागवतम आपके घर में है? हाँ। तो ना आप पढ़ते हैं? बोले हाँ, कभी कभी देखते हैं। तो फिर हमें पता चला कि वो वर्णन कर रहे थे भगवद गीता का, उनके घर पे छोटी सी भगवद गीता थी। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? तो अब चमस ऋषि वर्णन करते हैं, प्रारंभ करते हैं वर्णाश्रम से। क्यों वर्णाश्रम से प्रारंभ करते हैं? क्योंकि वे बताते हैं कि जो कार्य करना चाहिए और लोग उससे क्यों गिर जाते हैं, कारण बता रहे हैं पहले और फिर उनकी गति बताएंगे। तो वर्णाश्रम का वर्णन करते हैं कि चार वर्ण जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये कैसे आते हैं? तो बताते हैं कि तीन गुणों के प्रभाव में होते हैं ये लोग। तो जो ब्राह्मण होते हैं वे सत्व गुण में होते हैं, और जो क्षत्रिय होते हैं वो सत्व गुण और रजोगुण का मिश्रण होता है क्षत्रियों में। तो ब्राह्मण सत्व गुण, क्षत्रिय सत्व और रजोगुण का मिश्रण, वैश्य रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण होता है, और जो शूद्र है वो तमोगुण में होते हैं। ऐसे चार वर्णों का उन्होंने वर्णन किया, और साथ ही साथ वे आते कहां से हैं? ब्राह्मण मुख से या सर से आते हैं, भगवान के भुजाओं से क्षत्रिय आते हैं, और फिर भगवान के पेट से या जो खाने का स्थान होता है, वैश्य अन्न को उत्पन्न करना उनका कार्य है, वैश्य आते हैं, और फिर जो पैर हैं उनसे शूद्र आते हैं। यह कहना चाहिए कि अगर ये विराट रूप भगवान का लिया जाए इस ब्रह्मांड को, तो इस तरह से अलग अलग स्थिति पर ये लोग स्थित हैं। तो वर्णाश्रम का वर्णन वो करते हैं, और वो बताते हैं कि कई लोग हैं जो इसका उद्देश्य नहीं समझते। वर्णाश्रम क्या है? वर्णाश्रम कई प्रकार के होते हैं। एक वर्णाश्रम सामान्य वर्णाश्रम होता है, एक आसुरी वर्णाश्रम होता है, एक दैव वर्णाश्रम होता है, और एक तात्कालिक वर्णाश्रम होता है। ऐसे अलग अलग वर्णाश्रम है। तात्कालिक क्या है? कि कभी कोई एक व्यक्ति अपने कार्य को छोड़कर किसी विशेष आपात स्थिति में दूसरे के कार्य करता है। जैसे परशुराम जी ब्राह्मण हैं, लेकिन उन्होंने क्षत्रिय का कार्य किया, तात्कालिक वर्णाश्रम। तो ऐसा नहीं कि वो उसी में रहेंगे, इमरजेंसी, तो क्या करना था कर। विश्वामित्र क्षत्रिय हैं लेकिन ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं, तो कभी कभी कार्यों को करना होता है, अन्यथा व्यक्ति अपने ही कार्य को करता है। जैसे भगवान बताते हैं भगवद गीता में, श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्म भयावह। तो इस तरह ये वर्ण का उन्होंने वर्णन किया। और फिर वे वर्णन करते हैं कि पतन क्यों होता है लोगों का वर्णाश्रम से, तो कहते हैं कि पतन हो जाता है उनका क्योंकि वो भगवान को दो कारण देते हैं। एक लोग जो जानते नहीं है भगवान की भक्ति के प्रति, अनभिज्ञ है, उनको ज्ञान ही नहीं है, और दूसरे जो जानबूझकर जानते हुए भक्ति नहीं करते, दोनों का पतन बताया गया। तो एक तो हैं जो ठीक है अनभिज्ञ है, नहीं पालन करते, और दूसरे हैं जो जानबूझकर भगवान की भगवान का अनादर करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं, वे कहते हैं कि यहां अनादर की बात है और पतन, दो बातें हैं। जीव का पतन हो गया, हमारा पतन हुआ क्योंकि हमने भगवान का अनादर किया। तो वे कहते हैं कि मूलतः पतन क्यों होता है जीव का, जीव के पतन का प्रमुख कारण क्या है, वो आदर नहीं दे पाता किसको, गुरु को। जब हम गुरु को आदर नहीं दे पाते हैं तो निश्चित पतन होता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं कनिष्ठ भक्त के विषय में, वो भगवान को तो बहुत आदर देते हैं या भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन भक्तों का अनादर करते हैं, पतन का कारण। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति में रहते हुए अनादर ना करें। एक भक्त, एक वैष्णव वो है जो किसी का अनादर नहीं करता। क्यों अनादर करें? अनादर क्या है? अनादर ये एक अहंकार का प्राकट्य है। हमने किसी का अनादर कर दिया, मैं इसको नहीं मानता, मतलब मैं बहुत श्रेष्ठ हूं, तो अनादर करना ये अहंकार का लक्षण है, अनादर करना अज्ञान का लक्षण है। हम किसी का आदर नहीं करेंगे, अरे ये तो बेकार है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये अज्ञान का भी लक्षण है। क्यों? क्योंकि आप जानते नहीं कि हर व्यक्ति भगवान का अंश है, हर जीव भगवान का अंश है, इसलिए अनादर करना ही नहीं चाहिए। तो वैष्णव के गुणों में एक प्रमुख गुण है कि वो कभी अनादर नहीं करता किसी का। हाँ, लोगों को दूर रखना, जैसे मध्यम अधिकारी के विषय में सुनते हैं कि जो द्वेषी है उनसे वो दूर रहता है, लेकिन फिर भी उनसे द्वेष नहीं करता, उनका अनादर भी नहीं करता। रूप गोस्वामी लिखते हैं उपदेशामृत में कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण का केवल नाम ले रहा है, उसका मन से आदर करना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं अगर वो नियमों का पालन नहीं भी कर रहा, उसका संग मत कीजिए, उससे सुनिए मत, लेकिन उसका आप अनादर नहीं कीजिए, मन से आदर कीजिए। कृष्णे यस्य गिरितम मन साद्रियेत, मन से आदर करना चाहिए। तो ये जो वैष्णव सभ्यता है ये आदर पर आधारित है, एक दूसरे को आदर देना, शास्त्रों को आदर देना, आचार्यों की शिक्षाओं को आदर देना, आचार्यों को आदर देना, हर जीव को आदर देना। तो ये अनादर जो करना होता है, तो कई बार हम लोगों से भक्ति करते हुए एक दूसरे के प्रति आदर के भाव नहीं रह जाता, विशेष करके जब हम साथ में रहते हैं तो बहुत ज्यादा। जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, तुम आदर नहीं कर पाते हैं। तो बार-बार हर रोज अपने आप को याद दिलाइए, कहीं आज मुझसे किसी का अनादर ना हो जाए। सुबह उठे भगवान से प्रार्थना कीजिए, भक्ति में हूं, वैष्णवों के संग में हूं, कहीं अनादर ना कर बैठे। तो किसी जीव का नहीं करना चाहिए, और फिर वैष्णवों का तो बिल्कुल नहीं, भगवान का बिल्कुल नहीं अनादर होना चाहिए। मूल कारण है हमारा, बस एक अच्छा लक्षण सीख लीजिए, आदर करना, हर एक को आदर करें मन से, बाहरी दिखावा नहीं। दिखावा तो हम लोग रोज करते हैं, प्रभु जी आपके समान कोई है नहीं, मन में होता है, एक्चुअली कहना चाहते मेरे समान कोई है नहीं, लेकिन एक दिखावा बाहर। आदर दीजिए, हृदय से आदर दीजिए। तो इसीलिए अनादर करते हैं और उनका पतन होता है। देखिए भगवान की सृष्टि में भगवान हर जीव को आदर दे रहे हैं। भगवान ने हर जीव के लिए व्यवस्था की है, भगवान खुद दे रहे हैं, प्रकृति दे रही है, हर एक को स्थान दिया है, मच्छर तक को स्थान दिया है। हम तो मच्छर को एकदम बेकार वो प्राणी करके सोच के मार देते हैं, सीधा आया मच्छर बैठा मारो खत्म हो गया। उसको भी प्रकृति आदर देती है, सीखना चाहिए। तो फिर वो कहते हैं कि ये कारण है हमारे पतन का, और ये ऐसे सारे राजा को कह रहे हैं कि आपकी कृपा उनको चाहिए, क्योंकि वो भक्ति में नहीं आ पाते हैं, भक्तों के संग में नहीं आते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, इसीलिए आपकी कृपा चाहिए। अर्थात वो कह रहे हैं कि कोई अगर भक्तों के संग में आ जाए, भगवान की भक्ति करे, तो उसको कृपा शुरू हो जाती है। संसार दावा नल लीढ़ लोक त्रणाय कारुण्य घना घना तुम प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य, कृपा शुरू हो जाती है। लेकिन जो लोग भक्तों के संग में नहीं है, तो दरअसल उन लोगों के लिए पतन का मार्ग निश्चित है। पतन ये कहना चाहिए, पतित जीव किसको कहते हैं, हम लोग कई बार ये शब्द सुन चुके हैं, पतित जीव, ये पतित जीव आत्मा है, इसका पतन हो गया या ये हो गया। तो पतित जीव किसे कहा जा सकता है? पतित जीव दो प्रकार के लोगों को कहा जा सकता है, या दो लक्षण हैं पतित जीव के। पहला है कि वे भक्तों के संग में नहीं आ सकते, नहीं आ पाते, और आकर भगवान की पूजा इत्यादि में भाग नहीं ले पाते। पतित जीवों का लक्षण पहला संग में ना आ पाना, और दूसरा भगवान के नाम का उच्चारण न कर पाना। ये दो लक्षण है महत्वपूर्ण यहां जो इस अध्याय में दिए गए हैं, कि उनको पतित जीव कहा गया है, संघ में नहीं आ पाते। लोग बहुत बड़े बड़े कार्य कर लेते हैं दुनिया में, लेकिन भक्तों के संघ में नहीं आ पाते, ये दुर्भाग्य है। ये सच्चा पतन है, पतन और नहीं है कोई, ये पतन है कि भक्तों के संग में नहीं आए, भगवान की पूजा नहीं कर पाए, भक्ति नहीं कर पाए, और अगर भगवान के संग में आ भी गए, भक्तों के संग में, तो भगवान का नाम नहीं ले पाए ढंग से। तो इसलिए ऐसे जीवों पर भी आपको कृपा करनी चाहिए, ये वर्णन वो करते हैं। इसलिए ये जो साधु संग है, पतित जीव किसको कहा गया है? साधु संग भाग्यहीन, जिसके भाग्य में साधु संग नहीं है, वो फिर पतित जीव। जब ये प्रश्न चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से किया था कि सबसे बड़ा नुकसान क्या है जीव के लिए, तो ये उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर उसका सारा इकट्ठा किया हुआ धन चला गया ये सबसे बड़ी हानि है, उन्होंने कहा भक्तों का संग चले जाना सबसे बड़ी हानि। तो इसीलिए ये याद रखना चाहिए, साधु संग भाग्यहीन, हमारा भाग्य ऐसा ना हो जिसमें साधु संग नहीं है, ही ना मतलब ना होना। तो इसीलिए ऐसे पतन से हमें बचना चाहिए। और कभी कभी ऐसे भी लोग जो भक्ति में आ जाते हैं, वो उनका वर्णन करते हैं, भक्ति में आ जाते हैं, गुरु से दीक्षा ले लेते हैं, भगवान की सेवा करने लगते हैं, वो भी मोह में पड़ सकते हैं। तो एक उन्होंने वर्णन किया जो आदर ही नहीं करते हैं, और दूसरे जो आ जाते हैं तो वो भी मोह में पड़ जाते हैं। क्यों? अहंकार के कारण, उनको लगता है बहुत बड़े हो गए, बहुत श्रेष्ठ हो गए। वो कहते हैं ऐसे लोग क्या देवता भी अहंकार में आ जाते हैं, वो भी मोह में पड़ जाते हैं। हमने कई उदाहरण देखे इंद्र का, ब्रह्मा जी का, वो भी मोह में आ जाते हैं। और इस तरह वे कहते हैं कि माया के शिकार हो जाते हैं, और माया के शिकार होकर क्या करते हैं? दिखावा करते हैं भक्ति का, दिखा रहे हैं भक्त हैं, लेकिन मन केवल इंद्रियों में लगा हुआ है। जैसे भगवद गीता में भी भगवान कहते कर्मा कर्म इंद्रियाणि संयम में या आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते, धोखेबाज मिथ्याचारी। क्यों? मन कहां लगा है? मन भोगों में लगा हुआ है। तो इसी तरह वे कहते हैं कि व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। और फिर आगे चलकर अगले श्लोक में आठ कारण देते हैं कि व्यक्ति को अहंकार क्यों होता है, किस चीज से, किन चीजों से अहंकार हो जाता है। तो पहला वो कहते हैं धन से। बहुत धन होता है तो स्वाभाविक है अहंकार हो जाता है हमें, बहुत धनवान हूं इत्यादि। शक्ति बल हो तो भी अहंकार हो जाता है। बड़े ऊंचे कुल में जन्म हो तो भी अहंकार हो जाता है। बहुत बड़ी शिक्षा हो आपके पास, आपने बहुत अच्छा शिक्षा ले रखी है तो भी अहंकार हो जाता है। वैराग्य है आपके हृदय में जो भक्ति से जनित नहीं है, तो ऐसा वैराग्य भी हमें अहंकार ला सकता है कि देखो मैं कितना बड़ा वैरागी हूं, ये लोग सब भोगी लोग हैं। तो वैराग्य भी अहंकार लाता है। और फिर आगे वो कहते हैं सुंदरता ये अहंकार लाती है, या फिर यश, बहुत आप फेमस हैं या आपके पास बहुत शक्ति है, ये भी अहंकार लाता है। और अंत में वो कहते हैं कि जब हम बहुत सारी क्रियाएं शास्त्र के आधार पर करते हैं, रीति रिवाजों का पालन करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, वो भी अहंकार ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे हृदय में अहंकार लाती हैं, वो कहते हैं इससे बचना चाहिए। वेदों में बहुत सुंदर बात कहते हैं, वेदों में वैराग्य का पथ दिया है। तो कोई प्रश्न कर सकता है, नहीं, वेदों में तो भोग करने की भी अनुमति दी हुई है, मांस खाने की भी अनुमति दी हुई है, शराब पीने की भी अनुमति दी हुई है, तो कैसे दी हुई है, इसको बहुत ध्यान से समझना। वो कहते हैं कि वेदों में कुछ चीजों की अनुमति दी है, लेकिन वेद उसको बहुत ज्यादा आगे नहीं लाते हैं। जैसे मान लीजिए कि सरकार है, भारत में सरकार ने शराब पीने की अनुमति दी है, शराब की दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस लगता, अनुमति दी, लेकिन ऐसा नहीं कि भारत सरकार अपने सारे जगहों पर प्रमोट करती है शराब पीजिए शराब पीजिए शराब पीजिए क्योंकि हमने दुकानें खोली है। नहीं, वो उन लोगों के लिए है जो सुनेंगे नहीं। प्रभुपाद एक प्रवचन में कहते हैं कुछ ऐसे लोग हैं बदमाश, सुनेगा नहीं, खाएगा पिएगा, तो दुकान उनके लिए खोल दी जाती है। तो शास्त्रों में क्यों कहा गया और कैसे कहा गया, जैसे शास्त्रों में शराब पीने की अनुमति दी गई है। हमारा ये प्रवचन बड़ा, अगर बाहर जाएगा तो लोग बोलेंगे क्या ये, शास्त्रों में बहुत अच्छा, पीना चाहिए। हाँ, तो ध्यान से सुनिए, शराब पीने की अनुमति कैसे दी गई है, यज्ञ में, यज्ञ करने के बाद, जैसे यज्ञ से जो मदिरा उत्पन्न होती है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको कैसे पीने की अनुमति दी है, शास्त्र कहता है शराब को केवल सूंघ कर पीना चाहिए। सूंघ कर, वो भी अगर वो जैसे यज्ञ से सोमरस इत्यादि उत्पन्न होते हैं, तो सूंघ कर पीना चाहिए, शास्त्र कहता है हमारे लिए। ऐसे नहीं कि पीकर टुन्न हो गए, सूंघ कर पीना चाहिए। मांस खाना है, कद्द खाने खोलने की अनुमति नहीं है वेदों में। मांस खाना है तो यज्ञ कीजिए, यज्ञ में जब प्राणी को बलि चढ़ाई जाए तब उसको थोड़ा आप ले सकते हैं। मैथुन सुख लेना है तो ये ऐसे नहीं जो चाहे ले, विवाह कीजिए और विवाह में भी केवल संतान उत्पत्ति के लिए उस मैथुन सुख को ग्रहण कीजिए। तो वेदों में दिया है लेकिन सीमित रूप में। क्यों? क्योंकि कुछ लोग हैं जो वो करेंगे ही, लेकिन वेद ऐसा नहीं है कि इसी चीज को बतलाते हैं कि यही करना है, ये तो एक छोटा सा भाग है, लेकिन वेद बतलाते क्या है, वैराग्य, इन चीजों को छोड़ना, इसलिए बड़ा सीमित किया गया, नियम लगाए गए। प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे भारत में शराब पीने उसके नियम लगाए गए हैं, आपको वही दुकान में, हर दुकान में नहीं मिलेगा और फिर इतना ले सकते, कुछ नियम बनाए, हर कोई नहीं, सड़क पर नहीं पी सकते, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं रोटी बनाने के कोई नियम नहीं है, सरकार नहीं कहती आप कहीं रोटी नहीं बना सकते अपने घर में, आप अपने घर में शराब नहीं बना सकते, ये नियम है, लेकिन रोटी नहीं बना सकते, ये तो कोई नियम नहीं है। तो क्यों? प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि वो सही है और शराब गलत है। इसी तरह वेदों में जब नियम बनाए गए, नियमित किया गया है कि नहीं इतना ही करना है, ऐसे ही करना है, मतलब वो गलत है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो सुनेंगे नहीं, अगर उनको कहा जाए बिल्कुल बंद करो तो फिर उनके लिए दिया गया है। तो इसको ये नहीं मानना चाहिए कि शास्त्र कहता है हम खाएंगे पिएंगे, शास्त्र और भी बहुत सारी चीजें कहता है, उसको भी हमें पालन करना चाहिए। तो वे कहते हैं कि अगर व्यक्ति इस तरह से कार्य करता है, अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति करता है, तो अगला जन्म उसका निश्चित पशु का होगा और नरक में जाएंगे। तीसरा आत्महा बनेंगे, वो कहते हैं आत्महा मतलब आत्मा के हत्यारे। आत्मा के हत्यारे का अर्थ क्या है? वो कभी भी संतुष्ट नहीं रह पाएंगे, कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए हमारे लिए क्या है, हमें इन सबको त्यागना चाहिए। तो गति क्या बता रहे हैं, उन्होंने पूछा गति क्या है, उन्होंने कहा गति है कि पशु जीवन होगा, नरक में जाएंगे जब तक इन चीजों को छोड़ेंगे नहीं और कभी भी वो संतुष्ट नहीं रह पाएंगे और फिर अंधकार के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। तो ये उन्होंने गति बताई उन लोगों की जो भगवान की भक्ति नहीं करते। अब प्रश्न किया, आखिरी प्रश्न निमि महाराज ने किया, करभाजन ऋषि इसका उत्तर देंगे। आपको नौ नाम याद हो गए कि नहीं? किसको किसको याद? यस सुरूपन, बोलने दीजिए बोलने दीजिए। हाँ ओके यस आप ट्राई कीजिए पूरे नौ शुरुआत से।
श्री कवि, श्री हरि, अंतरिक्ष,
हाँ
प्रभु,
हाँ
त्रिभुवन
देखकर,
हाँ भूमि, चलस और करभाजन।
वेरी गुड, वंडरफुल, जय। तो कम से कम इस प्रवचन के ये लाभ हुआ कि दो नाम याद हो गए नवयोग इंद्रों के। तो अब अंतर करभाजन ऋषि अंतिम में अब वो दे रहे हैं, तो उनसे प्रश्न किया कि अलग अलग युग अवतारों का वर्णन कीजिए, किस रंग के होते हैं, क्या नाम होता है, कैसे उनको पहचानना चाहिए, क्या कार्य करते हैं और कैसे उनकी पूजा की क्या पद्धति है, तो ये वर्णन उन्होंने पूछा। तो करभाजन ऋषि वर्णन करना प्रारंभ करते हैं। तो कहते हैं कि सतयुग में जो भगवान के अवतार होते हैं वो सफेद रंग के होते हैं, शुक्ल कहा जाता है, तो शुक्ल कहा गया और अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। सतयुग बहुत सारे हैं, एक ही युग नहीं है, तो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। हंस है, वैकुंठ है, धर्म है, इन नामों से सतयुग में उनको जाना जाता है। और कैसे होते हैं वो? सफेद रंग के होते हैं, जटाएं धारण करते हैं, वैराग्य का प्राकट्य करते हैं, ये सतयुग के युग अवतार है। फिर त्रेता के, तो वो रक्त, वो लाल रंग के होते हैं, इसलिए उनको रक्त कहा जाता है। एक नाम भी है रक्त और वैसे भी रक्त कहा। जैसे हम लोग भागवतम में पढ़ते हैं जब श्री कृष्ण का नामकरण हो रहा है तो वो बताते हैं, गर्गाचार्य आए तो बता रहे थे कि आपका ये पुत्र पहले तीन रंगों में आ चुका है, शुक्ल रक्त तथा पीतस, तीन रंगों का वर्णन किया। तो रक्त त्रेता युग में, और त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा उनकी पूजा की जाती है, सतयुग में तपस्या के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा उनकी पूजा की जाती है। और उनके अलग अलग नाम है, विष्णु है, यज्ञ है, वृष्णि गर्भ है इत्यादि, तो ये अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। और फिर जब द्वापर का वर्णन करते हैं तो कहते हैं श्याम वर्ण के, और फिर भगवान वासुदेव को प्रणाम कर देते हैं, वो नमस्ते वासुदेव। तो ये जो द्वापर युग है इनमें भगवान की पूजा मंत्रों से, विग्रह सेवा की जाती है, नमो वासुदेवाय, अनिरुद्धाय इत्यादि, तो ये नमस् करते हैं, तो श्याम वर्ण के होते हैं। दरअसल जब द्वापर आता है, जैसे द्वापर आया तो भगवान श्री कृष्ण आने वाले थे स्वयं, इसलिए जो युग अवतार थे वो आए नहीं, श्री कृष्ण ने ही कार्य कर लिया, क्योंकि जब भगवान आते हैं तो सारे अवतार उनमें आते हैं। और फिर अब करभाजन ऋषि बहुत सुंदर कलयुग का वर्णन कर रहे हैं, कलयुग में आते हैं, तो कलयुग में क्या उनका रंग होता है, जैसे हर एक का रंग बता रहे हैं कि शुक्ल है, रक्त है, श्याम है, तो कलयुग में क्या होता है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसः। तो कहते हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं कलयुग में कैसे पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, उनका रंग क्या है, कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम, मतलब जो उनका जो रंग होता है वो कृष्ण काला नहीं होता है, अकृष्ण गौरांग या सोने का वर्ण होता है। और कृष्ण वर्णम कार्य क्या करते हैं, कृष्ण वर्णयति, हमेशा कृष्ण का नाम लेते रहते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। तो कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम, तो उनके साथ वो अपने साथ में अस्त्र शस्त्र लाए हैं, क्या अस्त्र शस्त्र हैं, उनके पार्षद सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय, उनको पूजा कैसे की जाती है, संकीर्तन यज्ञ से, और कौन करते हैं, यजंती ही सुमेध सह, बुद्धिमान लोग हैं वो उनकी पूजा कर लेते हैं, और जो बुद्धिमान नहीं हैं वे फिर क्या करते हैं, वे अन्य लोगों की पूजा करते रहते हैं। और इसको कहने के बाद बड़ा सुंदर श्लोक कहते हैं, भगवान के बारे में वर्णन कर रहे हैं, अब वर्णन संकीर्तन यज्ञ का किया और अब कलयुग का वर्णन कर रहे हैं, तो उसको करते हुए कहते हैं, त्यक्त्वा सुदुस्यजुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं माया मृगं दैतसेप्तितं वधाव वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसको उन्होंने कहा, आचार्यगण समझाते हैं कि ये श्लोक रामचंद्र जी के लिए, कृष्ण के लिए और श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए, तीनों के लिए आता है। तो क्या कहा गया है इसमें, त्यक्त्वा सुदुस्तुभ्य राज्य लक्ष्मी, क्या कर दिया, छोड़कर चले गए, क्या छोड़कर चले गए, सुरेपसित राज्य लक्ष्मी, जो राज्य लक्ष्मी है उसको त्याग कर चले गए, त्यक्त्वा सुदुस्तुभ्य धर्मिष्ठ आर्य वचस यदगार आदरण्य। तो क्या कहा चले गए, किस लिए गए, आर्य वचस, आर्य के या ब्राह्मण के वचनों के कारण, और धर्मिष्ठ हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, इसीलिए आर्य वचस यदगादरण्यम अरण्य में वन में चले गए। माया मृगम क्या किया, माया मृगम दैत से अनबधावत भागे माया मृग के पीछे, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, वैसे महापुरुष के चरणों में वंदन है। तो कैसे, तीनों के लिए है, सबसे पहले रामचंद्र जी क्या किया, त्यागा, कौन सी त्यागी, राज्य लक्ष्मी, अम्मी राज्य को त्याग कर चले गए, किस लिए गए, धर्मिष्ठ हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, आर्य वचसा अपने पिता के वचनों को पूरा करने के लिए, इसलिए वो कहां चले गए, अरण्यम वन में चले गए। और क्या किया, माया मृगम, हम सब जानते हैं सीता देवी ने कहा कि मुझे वो सोने का मृग चाहिए, भगवान भागे अन्व धावत उनके पीछे भागे, तो ऐसे महापुरुष को प्रणाम। कृष्ण, कृष्ण पर कैसे श्लोक आता है, तो कृष्ण के लिए त्यक्त्वा सुदुस्सुप, तो उन्होंने क्या छोड़ा, कौन सी राज्य लक्ष्मी छोड़ दी, जन्म हुआ मथुरा, बहुत ही ऐश्वर्यशाली स्थान था उस समय, तो मथुरा को छोड़कर वृंदावन चले गए, वन, भगवान वन में चले गए, किस लिए गए, धर्मिष्ठ हैं, धर्मिष्ठ मतलब भक्तों के अधीन है, आर्य वचसा किसने वचन कहा था, ये वसुदेव जी ने कहा कि अपने आप को छुपा लीजिए, कंस मार देगा, ये ऐसे मत रहिए, आर्य वचसा उनके वचनों का पालन करने के लिए चले गए। माया मृगम, वो कौन से माया मृग के पीछे भागे, आचार्यगण समझाते हैं कि यह वर्णन है श्रीमती राधा रानी का, कि भगवान माया मृगम एक पशु को कहते हैं, मृग, तो भगवान एक एक कहना चाहिए कि पेट पशु बन गए उनके, पालतू पशु, जैसे मतलब जैसे गोपियां, जैसे ब्रजवासी, जैसे राधा रानी उनको घुमाना चाहे वो घूम रहे हैं, भगवान उनके इधर उधर भाग रहे हैं जैसे वो चाह रहे हैं। और फिर अंत में चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के लिए कैसे है, क्या कौन सा उन्होंने छोड़ा त्यक्तवा, तो उन्होंने विष्णु प्रिया देवी जो उनकी सुंदर पत्नी थी जो लक्ष्मी देवी है उनको त्याग दिया और कहां चले गए, वन में चले गए, मतलब संन्यास ले लिया उन्होंने। और संन्यास लेकर क्या किया, आर्य वचसा, किसने कहा था, किसके वचन को, तो एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि जिस तरह तुमने मुझे पूरे रात घर के बाहर रखा है तुम भी कभी घर में नहीं रह पाओगे। महाप्रभु ने कहा थैंक यू, मैं सोच रहा था संन्यास लेना है, तो धन्यवाद। आर्य वचसा, और कौन से माया मृग अन्वधावत, कहां भाग रहे हैं महाप्रभु, ऐसे लोगों के पीछे भागे जो माया मृगम, जो माया के पीछे भाग रहे हैं, पागल हैं, महाप्रभु उनके पीछे भागकर उनको पकड़ कर ला रहे हैं, अनवधावत। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि लोग आएंगे नहीं हमारे पास, हमें जाना है। सुन सुन नित्यानंद सुन हरिदास, अमर आज्ञा सर्वत्र करह प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। प्रति घरे घरे गिया, लोग नहीं आएंगे, जाओ घर पे। अश्ल प्रभुपाद ने इस आदेश को पूर्णता पालन किया, सुनो सुनो नित्यानंद, प्रति घरे घरे गिया। महाप्रभु ने कहा हमारा आज्ञा है, ये हमारी मेरी आज्ञा है, इसका पालन करो। क्या पालन करो, प्रति घरे घरे गिया। तो प्रभुपाद जान गए ये लोग नहीं आएंगे, मुझे जाना होगा, प्रभुपाद अमेरिका गए और वहां बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, प्रति घरे घरे गिया, हर घर में जाकर बोलो, दरवाजा खटखटाओ और लोग आए तो उनको बोलो करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण शिक्षा क्या है, भगवद गीता कृष्ण की शिक्षा है, प्रभुपाद ने उसको प्रारंभ करवाया, यही आदेश पालन कर रहे थे। प्रभुपाद ने भेजा, प्रभुपाद एक जगह पर बैठे थे जब उन्होंने शुरू किया, लेकिन अपने भक्तों को जब भक्त हो गए तो भेज दिया, ऐसा नहीं कि यहीं रहो सब साथ में हम लोग बैठे रहेंगे, भेजा जाओ तुम लंदन जाओ, तुम यहाँ जाओ, तुम वहां जाओ, प्रचार करो, प्रति घरे घरे गिया करो ये भिक्षा। और क्या भिक्षा करो, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो ये श्लोक में यहाँ पर वो बताते हैं कि ऐसे भगवान का उन्होंने वर्णन किया कि किस तरह चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए। अब आगे वो वर्णन करते हैं कि किस तरह भगवान के चरण कमलों का जो आश्रय लेते हैं, और सुंदर श्लोक में वो वर्णन करते हैं कि जिन्होंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है क्या प्रभाव होता है भगवान के चरण कमलों का, या क्या है भगवान के चरण कमल। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि हमारे जितने भी ध्यान हैं, हम जिस भी प्रकार का ध्यान करते हैं उसका उद्देश्य है भगवान के श्री चरण, भगवान के चरण कमल उनका उद्देश्य होने चाहिए, नहीं तो हमारी जो ध्यान है हमारा जो भी हम पालन कर रहे हैं सब व्यर्थ। तो भगवान के चरण क्या है, वो उनके अर्थात ऐसे लोगों के जो ध्यान कर रहे हैं उनके ध्यान का लक्ष्य भगवान के चरण। दूसरा वो कहते हैं, बहुत सुंदर बात वो कहते हैं कि जब हम इस जीवन में रहते हैं तो हमें बहुत सी चोट लगती है। क्या चोट लगती है, हम सोचते हैं हम गिर जाते हैं। जब चोट कैसे लगती है, व्यक्ति गिर जाता है, गिर जाता है उसको कहीं चोट वोट लग जाती है। इस जीवन में भी जब व्यक्ति बहुत ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में लगता है तो उसको चोट लगती है, वो गिर जाता है। तो कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति से जो चोट हमें लगी है, गिरने से पतन हो गया, अब गिर के चोट लग गई, तो जो चोट लगी है उससे हमें बचाते हैं भगवान के चरण का अर्थ। दूसरे शब्दों में अर्थ ये है कि हम जब भगवान के चरणों की ओर नहीं मुड़ते हैं तो केवल अपने आप को आहत कर रहे हैं, अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं इंद्र तृप्ति करके। लेकिन जब चरण कमलों का आश्रय लेते हैं तो जन्मों जन्मों में वो जो चोट लगी है उससे वो दूर कर देते हैं, उसको नाश कर देते हैं भगवान के चरण कमल। आगे वो कहते हैं कि वे जो भी इच्छा है उसको पूरा करते हैं भगवान के चरण कमल। और फिर हम धाम जाते हैं तो धाम जाने का सही उद्देश्य पूरा तब होता है जब भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया जाता है, नहीं तो धाम जाने का क्या लाभ है, केवल घूमने पिकनिक मनाने धाम नहीं जाना चाहिए। तो भगवान के चरण कमल उसका फल भी हमें देते हैं और वो कहते हैं कि यही चरण कमल है जिनकी पूजा ब्रह्मा जी और शिव जी भी करते हैं। और इसीलिए केवल भगवान कृष्ण के चरण कमल हैं जिनको हमें समर्पण करना चाहिए, एक ही सही स्थान है समर्पण करने के लिए, ये करभाजन ऋषि कहते हैं। और फिर अंत में वो कहते हैं कि ये जो चरण हैं ये एक नौका के समान है जो हमें सागर के भवसागर के पार ले जा सकते हैं। तो इस तरह से हमें वो चरण कमलों का वर्णन करते हैं। और फिर वे आगे वर्णन करते हैं संकीर्तन यज्ञ का, इस कलयुग में इससे अच्छा और कोई मार्ग नहीं है भगवान के नामों का उच्चारण करना। वो कहते हैं कि सतयुग के लोग भी कलयुग में आकर भक्ति करना चाहते हैं, ये इतना महत्वपूर्ण है। तो क्या होता है संकीर्तन से, दो चीज वो कहते हैं संकीर्तन का लाभ क्या है, दो चीजें, पहला भक्ति प्राप्त होती है और दूसरा संसार का नाश होता है। आप सोचो कि संसार का नाश होता है तो क्यों करना चाहिए, हम लोग यहाँ के संसार का नाश करने बैठे हैं। संसार का नाश होता है मतलब हम वो संसार की बात नहीं कर रहे, आपने जो अपना संसार बना रखा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे, ये जो संसार आपने बना रखा है आपका, बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु, यही होता है ना। जन्म लेते हैं, थोड़ा समय रहते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं, विवाह करते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, बूढ़े होते मर जाते हैं, बस। क्या जीवन इसीलिए बना है? तो ये जो संसार हमने बनाया है संकीर्तन यज्ञ से, ये संसार का नाश होता है और भक्ति हृदय में आती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि सतयुग के लोग भी इस स्थान पर आना चाहते, भक्ति करना चाहते और फिर भक्ति का गुणगान करते हैं। और भक्ति का गुणगान करते हुए कहते हैं कि जितने भी ऋण हैं हमारे ऊपर वो सारे चुक जाते हैं। देव ऋषि भूतात ऋणाम पितृणाम ना किं करो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। तो कहते हैं कि जीव के ऊपर बहुत सारे ऋण होते हैं लेकिन भक्ति करते हुए ये सारे ऋण चुक जाते हैं, किसी किसी को वो ऋण चुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आगे वो अपनी शिक्षाओं को पूर्ण करते हुए वो कहते हैं कि अब ये जो भक्ति है इसका महत्व देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़कर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता है तो उसको क्या डरना चाहिए या उसको संशय होना चाहिए, उसके पाप बने रहेंगे। बहुत सुंदर श्लोक में वो कहते हैं स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरि परेश विकर्म यच्चो पतितं कथञ्चित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्ट। जिस मनुष्य ने अन्य सारे कार्यकलापों को त्याग कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के चरण कमलों की पूर्णता शरण ग्रहण कर ली है वह श्री भगवान का अत्यंत प्रिय है, भजतः प्रियस्य। निसंदेह यदि ऐसा शरणागत जीव संयोगवश कोई पाप कर्म भी कर बैठता है तो प्रत्येक हृदय के भीतर स्थित भगवान तुरंत ही ऐसे पाप के फल को समाप्त कर देते हैं। तो भक्ति का गुणगान वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने अपनी शिक्षाओं को अंत किया और फिर अब नारद मुनि वर्णन करते हैं कि अब उन्होंने वसुदेव जी को देखा, वसुदेव जी से कहा कि ये जो अब तुमने सिद्धांत सुने हैं भक्ति के, इसको जीवन में पालन कीजिए और इस तरह से आप रहिए। और फिर वो गुणगान करते हैं वसुदेव जी का, क्योंकि वसुदेव जी ने इस प्रारंभ में कहा था कि मैंने तो तपस्या करके कृष्ण को मांग लिया, सेवा नहीं मांगी। तो कहते कि आप और देवकी तो पूरे ब्रह्मांड में आपका गुणगान हो रहा है, क्योंकि कृष्ण आपके पुत्र बने, आप उनके साथ रह सकते हैं, आप उनको आनंद दे रहे हैं, इसीलिए आपका बहुत गुणगान है। लेकिन वो एक चेतावनी देते हैं कि कृष्ण को अपना पुत्र मत मानिएगा, ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ऐसे नारद मुनि अपने संवाद को, अपनी शिक्षाओं को, या वसुदेव जी को ज्ञान जो दे रहे थे उसको समाप्त करते हैं और वसुदेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और अंत में इस अध्याय के इस पूरे प्रसंग को जो हमने अभी पिछले कुछ दिनों में सुना, इसको सुनने का लाभ या फल दिया गया है। इतिहासम एवं पुण्यम धारयेद् यस्माहितः य विदुयेह शमलम ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो स्थिर चित्त होकर इस पवित्र ऐतिहासिक कथा का ध्यान करता है, वह इसी जीवन में अपने सारे कल्मश धोकर सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।